सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 20वीं वार्षिक स्पार्क मीटिंग के लिए। तो इस बार स्पार्क मीटिंग जो है वो बाप दादा के मिलन के साथ प्रोग्राम के साथ जुड़ा नहीं है, फिर भी करीब 680 रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज भी कुछ लोग पहुंच रहे भाई बहने, तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, पिछले बार भी मीटिंग में कितने थे, थोड़ा सा ज्यादा। तो इससे क्या पता चलता है, हम सब में पुरुषार्थ के प्रति एक जज्बा है, एक उमंग है, उत्साह है ना, सभी को है। तो इसी जज्बे के लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो इस बार वार्षिक मीटिंग का थीम भी रखा गया है, आप सबको मिल गया एजेंडा, सभी को एजेंडा मिला है। तो वार्षिक मीटिंग का थीम है रियलाइज लिबरेट सेलिब्रेट सस्टेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम सभी चाहते हैं कि हम परिवर्तन हो, हम हमारे में परिवर्तन आए, हम सभी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए जो चार कदम है, पहले तो खुद को रियलाइज करना, फिर रियलाइजेशन के बाद जो कमी है, जो चीज हमें रोक रही है, उससे खुद को लिबरेट करना, फिर उसको सेलिब्रेट करते हुए उस स्थिति को, उस सत्यता को, वास्तविकता को सस्टेन करना, ये है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसी आश के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है इन चार दिनों में हम सफल भी हो जाएंगे इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, सफल होंगे ना। तो जब तक हम रिफ्लेक्ट करें, तब तक मैं मंच पर आदरणीय अंबिका बहन जी, आदरणीय अलका बहन जी मुंबई, और विद्या बहन जी बेलगाम, और राजकुमार बाई पीस विलेज यूएस से आए हैं, उन सबको आमंत्रित करती हूँ वो मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। हम सब के बीच हमारे आदरणीय रमेश भाई जी पधारे हुए हैं, उन सबको हम कर्तव्यवधि से स्वागत करते हैं। तालियों की गूंज कुछ कम है, बाबा की याद से इस वार्षिक मीटिंग का आरंभ करेंगे। हमारे समक्ष अंजू गुप्ता बहन है जो लुधियाना पंजाब से है, वो बाबा की स्मृति में अभी गीत गाएंगे।
ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की सीखी तुमसे अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की सीखी तुमसे अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति।
प्यारे बाबा के और दादी जी ब्राता जी का सारे आशाओं को पूर्ण करने के लिए ये 20वीं वार्षिक मीटिंग जो है, जो विशेष नया थीम लेके आया है, रियलाइज लिबरेट सेलिब्रेट एंड सस्टेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये विशेष लक्ष्य रखते हुए ये जो वार्षिक मीटिंग शुभारंभ हो रहा है, उसके लिए ब्राता जी कितना भी व्यस्त होते हुए भी अपना तबीयत भी ना देखकर हम सब को इतना समय देते हुए पधारे हैं, तो मैं सभी के तरफ से दिल व जान सिख व प्रेम से ब्राता जी का विशेष स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ब्राता जी सारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है और स्पार्क विंग और कल्चरल विंग जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन है और सारी ईश्वरीय सेवाओं का आदि से लेकर के अब तक की भी जो भी विहंग मार्ग की सेवाएं है उनका सारा इन्वेंशन और उनको आगे बढ़ाने का सारा श्रेय ब्राता जी को जाता है और ब्राता जी का सारी जो विशेषताएं है वो आप सब हर मास के हमारे ज्ञानामृत में आप पढ़ते ही है कि कैसे ब्राता जी हर समय नई नई बातें और नए नए विधान से ईश्वरीय सेवाओं को आगे ले जाने में और सारी यज्ञ की कारोबार को एक नया दिशा देकर के आगे बढ़ाने में ब्राता जी का विशेष योगदान है और दिन रात ईश्वरीय सेवाओं में और सारी भारत और विदेश की जो भी ऑडिटिंग सेवाएं है ब्राता जी आदि से करते आ रहे हैं और ब्राता जी एक विशेष मॉडल है जो मम्मा बाबा का विशेष पालनाएं लेते और ब्राता जी का प्यारे बाबा के साथ ऐसे एक गहरा पिता के साथ दोस्ती का भी इतना अच्छा संबंध है जो ब्राता जी का क्वेश्चन आंसर बाबा के साथ ये जो चलता है और जो हमारे आगे रखते हैं उससे हमें हर बार हर समय एक नई नई प्रेरणाएं मिलता जाता जो बाबा की याद में और उसको सहज करने में विशेष हमें लाभ मिलता है। ऐसे ब्राता जी हमें स्पार्क में भी हर दम सदा नई नई बातें देकर के एक नया रूप से आगे बढ़ने का सारा प्रेरणाएं देते रहते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है ऐसे भ्राता जी हमें मिले हैं, जो हमें कुछ भी अपना नहीं देखते हैं, लेकिन सदैव हमारे बीच में है और हमें सहयोग देते रहते हैं। इसलिए मैं दिल से फिर से आप सब के तरफ से भ्राता जी का स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में प्यारी दादी जी आने वाले हैं, और दादी जी हमारे बहुत सौभाग्य है जो दादी जी आज विशेष टाइम दिया है। भ्राता जी दादी जी को विशेष निमंत्रण पहले दिया था, उसको स्वीकार करके आ रहे हैं। तो इन एडवांस में दादी जी को, जो हम सबके बीच में उनका पधारना ही एक बहुत बड़ा वरदान है, तो दादी जी का भी मैं विशेष विशेष स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे भ्राता राजकुमार भाई पीस विलेज अमेरिका से पधारे हैं, और इसके लिए बाबा से मिलने के बाद रुके हुए हैं, जो विदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं राजकुमार भाई का भी विशेष दिल से आप सब की ओर से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विद्याबेन जो बेलगाम के जोनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क के, उनका भी मैं विशेष स्वागत करती हूँ। और अलकाबेन महाराष्ट्र के जोनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क के, मैं उनका भी आप सब की ओर से विशेष स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और शरण मिश्रा मिरजदार जो भाई है वो, उनका भी मैं विशेष स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप सब भी इतना समय लेकर के सब कुछ अपना कार्यों को सारा विराम दे करके आप आए हैं, आप सबको स्पार्क विंग की ओर से और भ्राता जी की ओर से मैं विशेष स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति।
अंबिका बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ सबने नाश्ता किया है, चाय भी ले लिया है, क्योंकि तालियों की गुंजबुज कम ही सुनाई दे रहा है। सभी में उमंग उत्साह है ना, पुरुषार्थ के प्रति भी और मीटिंग के प्रति भी, सभी उसी उमंग उत्साह से आए हैं। अब भी मैं निवेदन करती हूँ हमारी बहनों से, फूलों से सभी का स्वागत करें। हम सभी चार दिन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, खास विशेष पुरुषार्थ और कई बातों का प्लानिंग के लिए। तो पूरे चार दिनों की एजेंडा हमारे समक्ष रखेंगे विद्या बहन जी, जो सब जोनल कोऑर्डिनेटर है स्पार्क के बेलगाम से। आप पिछले 30 साल से इस ज्ञान में चल रहे हैं और 25 साल से अपना समर्पित जीवन वहाँ बेलगाम में सेंटर में सेवाएं देते आपने व्यतीत की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी विद्या बहन जी को कि हमारे समक्ष पूरे चार दिन का एजेंडा ब्रीफ करें।
ओम शांति। बीसवीं एनुअल स्पार्क मीटिंग में आए हुए आप सभी का और मंच पर उपस्थित आदरणीय भ्राता जी और अंबिका बहन जी और सभी भाई बहनों का स्वागत करते हुए, इस बार के मीटिंग का थीम बहुत ही सुंदर है। चार दिन चार प्रकार के विशेष अनुभव करने के लिए, रियलाइज लिबरेट सेलिब्रेट एंड सस्टेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे जीवन में महापरिवर्तन लाने के लिए जो इस वर्ष का थीम है उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। तो ये थीम पूरे मीटिंग में रहेगा, रोज एक एक दिन की विशेष अनुभूति आपको करनी है। तो इस मीटिंग में जो भी मेजर एक्टिविटीज होंगी उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा देख लेंगे। नए आयाम सेवा के, उसमें इस बार यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, जो भारत के प्राचीन योग को आधार लेते हुए उसका ही एक दिन मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने जो तय किया है उसके आधार पर विशेष गॉडली सर्विस क्या हो सकती है, क्योंकि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट योगा है, राजयोगा। तो और वो भी प्राचीन राजयोग जो बाबा सिखाने आए हैं उसके बारे में हाईलाइट रहेगा और सेवा के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। और वैसे ही स्पार्क विंग की तरफ से 2015 के लिए क्या क्या नवीनता ला सकते हैं इसके बारे में हाईलाइट हो जाएगी। और कॉन्फ्रेंस और स्पार्क की मीटिंग्स प्रोग्राम्स जो भी हर वर्ष के भांति चलते आ रहे हैं तो इनको जोनल लेवल पर या तो हाफ दिन आधा दिन के लिए या दो तीन दिन के लिए प्रोग्राम्स कैसे करें इसके बारे में भी चर्चाएं चलेंगी। और साथ साथ लेबोरेटरी एंड रिसर्च एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, इस बार एक नया लेबोरेटरी अपना मधुबन ज्ञान सरोवर में बन चुका है तो उसके अभी तक पूर्ण तैयारी बाकी सब हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी को बिठाने का और कैसे चालू करने का इसका भी अभी शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चाएं होती है। तो आइए हम सभी एक बार एजेंडा को देख लेंगे, आप सभी के हाथ में एजेंडा होगा। तो कैसे फिर इसको चार दिन तक कराया जा रहा है, वैसे आप सभी को ये ज्ञात होगा स्पार्क विंग की एक बहुत बड़ी विशेषता है समय पर प्रोग्राम शुरू होती है। आज के दिन ही 5 मिनट देरी से शुरू हुई बट अदरवाइज हर समय आप सभी को कार्यक्रम से पहले ही पहुंचना है क्योंकि मिनट टू मिनट प्रोग्राम हमने तैयार किया है। तो पहला दिन डे ऑफ रियलाइजेशन होगा, आज के दिन आपको थीम में बताया गया है कि रियलाइजेशन करते जाए पूरा दिन एक एक घंटे में एक बार, तो वो शुरू हो जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी वेलकम हो चुकी हैं दो तीन रीति से और साथ साथ स्पार्क विंग की एक्टिविटीज अभी हो जाएगा 10:40 से स्पार्क विंग की एक्टिविटीज और इसके बारे में बीके राजकुमार भाई पीस विलेज यूएसए और उसके बाद फिर आदरणीय रमेश भाई जी से इंस्पिरेशन और गाइडलाइंस मिलेंगी। थीम है इनोवेटिव स्टेप्स टूवर्ड्स ए न्यू पैराडाइम ऑफ स्पार्क एक्टिविटीज और उसके बाद फिर इनॉग्रेशन होगा, दादीजी आदरणीय दादीजी पहुंचेंगी और रमेश भाई जी चेयरपर्सन स्पार्क का और बीके अंबिका बहन जी नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग बैंगलोर इनॉग्रेशन हो जाएगा इन सबसे और आदरणीय दादीजी से हम सभी ब्लेसिंग सुनेंगे। उसके बाद फिर ग्रीटिंग्स होगा आदरणीय अंबिका बहन जी से जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है और बीके अलका बहन कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग मुंबई उनसे और सभी सीनियर्स से। उसके बाद टोली मिलेंगे हम सभी को, स्टेज कोऑर्डिनेटर आज की हैं बीके स्नेहा बहन और साथ में दोपहर को लंच होगा, रेस्ट होगा, टी होगी, उसके बाद साढ़े चार बजे से फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, मीटिंग शुरू होगी। तो ब्रीफिंग ऑन राजयोगा एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट्स RAPs बाय बीके रामाराव भाई फैकल्टी स्पार्क विंग मुंबई, बीके रूपेश भाई फैकल्टी स्पार्क विंग ज्ञान सरोवर, बीके विनय पांड्या भाई कोर ग्रुप मेंबर स्पार्क विंग वल्लभ विद्यानगर, इनके द्वारा ब्रीफिंग होगा ये प्रोजेक्ट्स के बारे में। और उसके बाद इसका फैसिलिटेटर होंगे बीके श्रीकांत भाई हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग ज्ञान सरोवर। फिर 5:30 से लेकर शांति की शक्ति द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल एन एक्सपेरिमेंटल सेशन एक्सपीरियंशियल सेशन होगा छाया बहन से जो कोर ग्रुप मेंबर है स्पार्क विंग की। और फिर ब्रेक होगा उसके बाद 7:45 से कॉल ऑफ टाइम हाउ टू गेट एटलीस्ट पास मार्क इन एवरी सब्जेक्ट इन फाइनल पेपर, आदरणीय अंबिका बहन जी इसके बारे में हम सभी को क्लास कराएंगी। फिर डिनर होगा उसके बाद फिर 9 बजे से फिर से बैठेंगे और लोकल चैप्टर्स प्रेजेंटेशंस होंगी इसमें, उसमें बीके सुमलता बहन हैदराबाद से, फिर बीके कविता बहन पौंडीचेरी से, बीके यामिनी बहन पुणे लोकल चैप्टर से होगा और इसका फैसिलिटेटर होंगे बीके भारती भाई शहदा महाराष्ट्र।
राजकुमार भाई जी को वो पिछले 12 साल से अभी पीस विलेज यूएस में रहते हैं लेकिन ज्ञान उनको यहाँ से ही मिला इंडिया से और पुणे लोकल चैप्टर के जो स्टार्टिंग में वो पुणे लोकल चैप्टर से स्पार्क से जुड़े, तो आदि से स्पार्क से जुड़े हैं, अभी यूएस में रहते हैं, तो वहां भी स्पार्क की एक्टिविटीज उन्होंने चालू की और हर साल इसके लिए खास आ रहे हैं पिछले 3 साल से। तो मैं निवेदन करती हूँ राजकुमार भाई जी को, हमें स्पार्क और उसकी गतिविधियों का हमें अवगत कराए, कुछ नए मेंबर्स भी आए हैं इसलिए उनके लिए जरूरी है।
वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस वर्ष स्पार्क के 20 वर्ष पूरे होते हैं, तो बाबा ने जैसे हमको प्रेरणाएं दी है इस वर्ष में कि कुछ नवीनता लाई है, प्रोजेक्ट्स में भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नवीनता लाएं। आज ऐसे संकल्प आया कि 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उन आत्माओं को याद करें जो स्पार्क के प्रेरणा स्त्रोत्र रह चुके हैं। सो बड़े भाइयों की अनुमति चाहता हूं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट 1 मिनट साइलेंस फॉर 3 आत्माओं के लिए जो प्रेरणा स्त्रोत्र थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, दादी प्रकाशमणि, भ्राता जगदीश भाई और हमारी प्यारी उषा बहन जी। तो हम 1 मिनट के लिए उनको मार्क ऑफ रिस्पेक्ट विल बी साइलेंट एंड रिमेम्बर देम। ओम शांति। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स होते हैं, वैसे ही स्पार्क के 4 पिलर्स हैं। 3 का तो नाम मैंने ले चुका हूं, दादी जी, जगदीश भाई और हमारी प्यारी उषा बहन जी, और 4th पिलर हैं हमारे वरिष्ठ भ्राता रमेश भाई जी। 1995 में रमेश भाई जी, जगदीश भाई, उषा बहन और दादी जी के प्रेरणाओं से स्पार्क की शुरुआत हुई और तय करते करते आज 20 वर्ष हो गए। बाप दादा ने हमें कहा था कि रिसर्च का अर्थ क्या है, स्पार्क के हम रिसर्च करते हैं ना, स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर। स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस मतलब ज्ञान जो सुना है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो हम सुनते हैं रोज, उसे अपने जिंदगी में किस तरह से अप्लाई करें, अपने जीवन में किस तरह से लाएं उसे, ताकि आज का जो थीम है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, एक अच्छी रीति से हो जाए। बाप दादा ने कहा था कि रिसर्च का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना और कराना। सिर्फ करने पे नहीं रह जाना है, अनुभव किया बहुत अच्छा लगा छोड़ दिया तो क्या होता है, सीमित रह जाता है हम तक ही। और बाबा तो कहते हैं कि सबको ये पता पड़े तो अनुभव हम करें और औरों को ये अनुभव कराएं। और स्पार्क का फुल फॉर्म तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च, स्पिरिचुअल नॉलेज को किस तरह से जीवन में अप्लाई करना। इसके लिए एक विजन रहता है, ये अप्लाई करेंगे तो हमारा कल जो होगा एक बेहतर कल होगा, जिसे कहते हैं बिल्डिंग अ बेटर टुमारो थ्रू अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। इसके लिए हम ये कहते हैं कि होलिस्टिक रिसर्च, जो कहते हैं स्पिरिचुअल रिसर्च टू डेवलप इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स, योग में योग का प्रयोग करके अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स निकालें ताकि हम जो योग करते हैं उसे जीवन में आसानी से सहज रीति से ला सके। इसके लिए जब सांस पाक शुरू हुआ था कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स जिसे SIG कहते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में शुरुआत में 6 ग्रुप थे, एक तो था राजयोग लैब, लैब मतलब लेबोरेटरी, रिसर्च की जाती है एक लेबोरेटरी में, तो ये स्पार्क एक लेबोरेटरी है जहां पे योग का प्रयोग किया जाता है। तो पहला इंटरेस्ट ग्रुप था राजयोग लैब, दूसरा था वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। आप सबको मालूम ही है एजुकेशन कितना महत्व रखता है, और खास करके आज के युवा पीढ़ी को एजुकेशन कितना देना बहुत जरूरी रहता है। एजुकेशन के साथ साथ हर एजुकेशन में एक वैल्यू हो, न कि सिर्फ किताबी पढ़ाई, जैसे कहते हैं ना किताबी कीड़ा, किताब निकाला और जस्ट रट लिया, जाके परीक्षा दे दी, 5 साल के बाद उनको पूछो क्या पढ़ा तो उनको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करते हैं, वैल्यूज लाते हैं, तो उसमें बेस काफी यंग जनरेशन का स्ट्रांग होता है। तीसरा है मेडिसिन। मेडिसिन में किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को लाएं ताकि जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स औरों को देते हैं उसमें एक स्पिरिचुअलिटी भी मौजूद हो। चौथा था वैल्यूज इन बिजनेस। आपको मालूम है बिजनेस आजकल किस तरह से चलता है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि योग पे प्रयोग करके बिजनेस में वैल्यूज किस तरह से अप्लाई करें। पांचवा था डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। बाबा कहते हैं आपको सशक्त रहना पड़ेगा, समय बहुत करीब आता जा रहा है, और जैसे डिजास्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि अंत समय में जब डिजास्टर आता है, कुछ अपहीवल होती है, कहे वो अर्थक्वेक का हो या तूफान जो भी, उसमें किस तरह से हमारी स्थिति एक रस रहे और ऊपर नीचे ना हो, इसलिए डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट का भी एक ग्रुप था। और छठा ग्रुप था नेचुरल साइंसेस। इन सब ग्रुप के रिसर्च पे काफी पब्लिकेशंस छपी हुई हैं जो आप स्पार्क ऑफिस में या यहां पे बाद में यहां पे काउंटर पे भी मिल सकता है, आपको चाहे तो आप ले भी सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इन 20 वर्षों में स्पार्क की मेंबरशिप कुछ मेंबर से शुरू हुई और आज 2015 में जबकि हमने लाइफ मेंबरशिप शुरू की है करीब करीब 1500 लाइफ मेंबर्स हैं स्पार्क के, और उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले वर्षों में ये 1500 बढ़ के और संख्या अच्छी हो जाएगी, जहां पे योग के प्रयोग का लाभ और ब्राह्मणों को भी मिल सके। 1500 मेंबर्स के साथ साथ लोकल चैप्टर्स जो हैं वो करीब 40 लोकल चैप्टर्स हैं, और एक प्रोग्राम होता है ट्रेन द ट्रेनर्स, जैसे हम भी पीछे कर चुके हैं, लाइक टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स क्या करते हैं औरों को ट्रेन करते हैं, लेकिन उन ट्रेन करने वालों को भी एक ट्रेनिंग का कोर्स होता है ट्रेन द ट्रेनर्स। वैसे आज तक 4 प्रोग्राम्स हो चुके हैं ट्रेन द ट्रेनर्स के और एनुअल रिट्रीट्स जिसे हम एनुअल मीटिंग कहते हैं, हालांकि 20 वर्ष हुए मगर मीटिंग हुए 35। अलग अलग स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, उनमें जो भी रिसर्च हुआ है उसके पब्लिकेशंस आर्टिकल सब स्पार्क ऑफिस में उपलब्ध हैं, जो आप जिसका फायदा उठा सकते हैं। और स्पार्क जो विंग जब बना उसके पहले ही स्पार्क ब्रांच्ड आउट टू ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनसे मिलके भी रिसर्च करना शुरू हुआ था, जैसे DRDO अभी ऑलरेडी प्रोसेस में है रिसर्च करने के, बहुत बार यहां आते हैं ब्राह्मणों के ऊपर रिसर्च होता है उनका। निमहांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, उनसे भी मिलके रिसर्च के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। NDMAI नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे कहा डिजास्टर के वक्त किस तरह से उनकी सेवा की जाए हम अपनी स्थिति में रह के। फिर ISIC इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, बैकबोन चाहिए ना, नहीं तो सीधा तो खड़े नहीं रह सकेंगे, तो इसलिए उसमें भी स्पिरिचुअलिटी किस तरह से लाया जाए इस पे प्रयोग होता है। ये तो हुई स्पार्क रिसर्च और जो प्रोजेक्ट्स लिए थे। लाइफ मेंबर जैसे मैंने कहा था 1500 लाइफ मेंबर है स्पार्क में, लाइफ मेंबर बनने की यानी लाइफ मेंबर फीस इज 2025 जिससे आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं। तो एक ही अनुरोध है, अगर यहां पे कोई अभी तक लाइफ मेंबर नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द वो उसका ब्रेकअप इस तरह है कि 2000 लाइफ मेंबर फी है और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कहते हैं ना वो 25 रुपये है, सो उस तरह से 2025 होता है। लाइफ मेंबर बन गए, अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज स्पार्कलर्स, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहले तो नेशनल जोनल लोकल चैप्टर यहां पे जो भी मीटिंग्स होते हैं एक चीज पक्का करना है कि वी गो एंड अटेंड दोज मीटिंग्स, हमको वो मीटिंग में रहना जरूर है। और जो जीवन हम व्यतीत करते हैं उसमें राजयोग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, और जो भी जैसे लोकल चैप्टर में कभी प्रोजेक्ट लिया एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्च के लिए, सो मेंबर्स लोग का ये कर्तव्य होता है कि वो पहले सामने आए कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, बी अहेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस मैसेज को और ब्राह्मणों तक भी फैलाना है और ताकि और भी इसमें शामिल हो सके। अपने आप को एंगेज कर लिया स्पार्क में, वो उसकी कुछ विधियां हैं, जो भी रिसर्च करते हैं आज तक बहुत कम हुआ है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो औरों को तो पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हम स्वयं से और तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट जब करते हैं तो उसे प्रिंट करके फिर औरों को उपलब्ध करा सकते हैं। और होगा कि अपने शहर में कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां पर अभी तक पहुंचे नहीं है, तो हमारा कर्तव्य यह होगा कि ट्राई एंड रीच आउट टू दी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां तक हम पहुंचे। और आखिर में बाप दादा की ब्लेसिंग्स ज्योति स्पार्क के प्रति। बाप दादा ने कहा था कि जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ के रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छा टचिंग होगी। ये देखा ना, जब अकेले में बैठ के या बाबा के याद में हम बैठते हैं तो एंटीना क्लियर हो जाता है, रिसेप्शन क्लियर होती है, तो टचिंग भी उतनी अच्छी मिलती है। और ऐसे टचिंग से बहुत को लाभ मिलेगा, सिर्फ अपने को नहीं औरों को भी उसमें लाभ बहुत मिलेगा। तो अच्छा है करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते आगे बढ़ते चलो, बाकी सब अच्छा है। इसमें इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। As much as you will be doing research while being seated in the cave of introspection, that much good touching you will get. Many will be benefited by those touching. Good. Keep it up. But maintain a balance between application and yoga. As such, you're all doing well. Acha. Om Shanti and welcome once again. Thank you.
I request Adarniya Mrityunjay Bhaiji to give us a few words of greeting. आप सभी जानते हैं मृत्युंजय भाई जी एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और आप सबने वैल्यू एजुकेशन का कोर्स सुना होगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी होंगे जिन्होंने वैल्यू एजुकेशन का कोर्स किया, एमएससी या डिप्लोमा कुछ है यहाँ पे भाई बहन है? हाँ है। तो उन सबके लिए जो निमित्त आधार मुहूर्त है हमारे मृत्युंजय भाई जी, तो उनसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ वो आके हम सबके समक्ष अपना ग्रीटिंग्स प्रस्तुत करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदा प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय रमेश भाई जी और इस स्पार्क मीटिंग में मुख्य रोल अदा करने वाले आदरणीय अंबिका बहन जी, मंचासीन अलका बहन जी, स्नेहा बहन जी और राजकुमार भाई और इस मीटिंग में देश विदेश से आए हुए सभी भाई बहनों को, अपनी तरफ से एजुकेशन विंग की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मल्टी मिलियन टाइम्स वधाई वधाई वधाई। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है 20th एनुअल स्पार्क मीटिंग में आप सभी ने याद किया, मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। और मुझे ये भी खुशी हुई है 20 साल से ये मीटिंग, इस प्रकार की रिसर्च एक्टिविटी चल रहे हैं। मुझे अभी समाचार सुनकर के बहुत खुशी हुई है 200 बुक्स एंड आर्टिकल्स हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड थ्रू दिस स्पार्क मीटिंग। ये बहुत गौरव की बात है। आदरणीय भ्राता जी निर्वैर भाई जी भी पहुंच गए हैं, मैं आप सभी एक मिनट खड़े होकर के स्वागत करें। आप बैठ जाइए। देखो आप सभी कितनी भाग्यशाली, इतने सभी सभी महारथी सभी आ रहे हैं। रमेश भाई जी आपके सम्मुख है और सदा प्रेरणा स्रोत है। अभी निर्वैर भाई जी आपके सम्मुख आकर के प्रेरणा देकर के गाइडलाइंस भी देंगे और मुझे समाचार मिला परम आदरणीय दाजी प्रदीप मोहिनी जी भी कुछ ही क्षण में इधर उपस्थित होंगे। कितनी भाग्यशाली, कई बार बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं दादियां नहीं मिलते हैं, बड़े भाई लोग भी नहीं मिलते हैं, आप कितनी भाग्यशाली है आप सोच लो। कितनी बड़ी बात। मुझे ये मेरे ये मान्यता है इस संसार में कितने भी समस्या है, चाहे व्यक्तिगत चाहे पारिवारिक चाहे राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय, इन सब में कोई न कोई वैल्यूज की एप्लीकेशन की कमी है, नंबर वन। नंबर टू, कोई न कोई ज्ञान की कमी है, अज्ञान भरा हुआ, ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड बिलीफ ब्लाइंड अंडरस्टैंडिंग है, उसका परिणाम ही वो समस्या है, उस परिणाम ही उसका विस्तार है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है रमेश भाई जी उनकी साथी लोग सोच करके एप्लीकेशन ऑफ राजयोगा और एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज इन डिफरेंट प्रोफेशनल्स, कुछ प्रोफेशन में आप लोगों ने करी रहे और भी प्रोफेशनल में उसको एप्लीकेशन करने की प्रयास करके उसका डेटा कलेक्ट करें, उसका एप्लीकेशन के माध्यम द्वारा व्यक्तिगत समस्या व सामाजिक समस्या कैसे परिहार हुआ उसका आप लोगों ने एक आंकलन करके टेबल बना करके रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करके करेंगे, वो हम बहुत भविष्य के लिए बहुत अच्छा एक साधन हो सकता है। दूसरा जो है आजकल की जो है इनफाइटिंग जो प्रॉब्लम है व्यक्तिगत से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल की, इसका भी एप्लीकेशन का जरूरत है, बेटर गवर्नेंस, क्योंकि सती तो इतनी व्यवस्थित रीति से व्यवस्था होगा उसका तो वैल्यू के कारण ही है, वह डिसिप्लिन के कारण है, वह प्यूरिटी के कारण है, आदि आदि बात है, उसको विस्तार में नहीं जाएंगे। प्रेजेंट डे में भी उसको बेटर गवर्नेंस कैसे हो सकता है उसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। और मैं दूसरे एक क्लास में एक बात कहना चाहता हूं, जो भी इसमें रिसर्च विद्यार्थी है उनको डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं, अभी तो हमारा एजुकेशन विंग के माध्यम द्वारा कम से कम 4 लोगों को डॉक्टरेट डिग्री मिले अलग अलग सब्जेक्ट में रिसर्च करके, अभी अभी लेटेस्ट में गीता ज्ञानदात निराकार परमात्मा है, श्री कृष्ण नहीं साकार नहीं है, उस बात को सिद्ध करके कोलंबो यूनिवर्सिटी ने, कोलंबो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसके डॉक्टरेट दिया, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। ये बहुत ही ऐसी दूसरी भी एक बहने रिसर्च किया था, उसको हम लोगों ने सहयोग दिया था, राज्यों की उपयोगिता अलग अलग धर्मों में क्योंकि उनके धर्मों में भी योग की बातें हैं, परंतु उसका राज्ययोग की उपयोगिता कैसे है और उसके माध्यम द्वारा धार्मिक समस्याएं कैसे सॉल्यूशन हम दे सकते हैं आदि आदि बातों को, उनको भी डॉक्टरेट डिग्री मिली राजस्थान जोधपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा उसको मिले हैं, और भी पाटन यूनिवर्सिटी के द्वारा मिले हैं, बनारस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिली है, और देश के अच्छे अच्छे नामग्रामी यूनिवर्सिटी के द्वारा। यदि आप लोगों में भी कोई ऐसी इंटरेस्ट है, हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है और कुछ यूनिवर्सिटीज भी आगे आए हैं लोगों को मदद करने के लिए, यदि हम आपको मदद कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं अधिक, क्योंकि मेरा रोल है ग्रीटिंग देने के लिए, इसके लिए मैं अधिक समय न लेते हुए आप सबको मेरा शुभकामना है और इस रिसर्च में आगे बढ़ते रहे और हम आपके साथ है, आपकी सहयोगी है। ओम शांति, नमस्कार।
आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे उन्होंने कहा हम सबका सौभाग्य है इस बार की मीटिंग में इतने वरिष्ठ भाइयों का संग मिल रहा है, उनकी वरदान और मधुर वाक्य सुनने मिल रहे हैं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे 3 भाई वरिष्ठ भाइयों में से एक निर्वेर भाई जी, जो चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग के और जनरल सेक्रेटरी है ब्रह्म कुमारी के, आपने साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई है, हम सब के समक्ष आप समय लेकर पधारे हैं, हम सब से आप मिलने आए हैं तो हमें इस बात की खुशी है, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे प्रति कुछ बोल वाक्य हमारे समक्ष रखें।
ओम शांति। सबसे पहले तो मैं रमेश भाई जी, अंबिका बहन जी तथा आप सब इस सभा में उपस्थित सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारक दे रहा हूं कि एक स्पार्क जुगनू की तरह 20 वर्ष पहले उसकी शुरुआत हुई। और उसके द्वारा 20 वर्ष में इतना कार्य हुआ है। और आज का जो विषय रखा है, रियलाइज, लिबरेट, सेलिब्रेट, सस्टेन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं समझता हूं कि ये काफी सोच सोच करके इस टॉपिक को रखा है, इसकी आवश्यकता होगी जरूर। और आप सब भाई बहने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के कोने कोने से, विदेश से यहाँ पधारे हैं, तो आपका स्वागत भी है और साथ साथ एक यही शुभकामना है कि इतने सुंदर टॉपिक पर जो भी विचार आप सबके निकलेंगे उससे हर एक को मदद मिलेगी आगे बढ़ने की, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें सो का भी ट्रांसफॉर्मेशन, सो परिवर्तन भी होगा, और साथ साथ वो बेसिस बनता है विश्व परिवर्तन का, तो उससे कुछ नई चीज और बन जाएगी, नई किताब और बन जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप सब भाई बहनों को इस आयोजन के लिए बहुत 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 मुबारक और शुभकामनाएं। ओम शांति।
आदरणीय निर्वेर भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबके बीच में पधारे और अपनी शुभकामनाएं दी। हम कर्तक ध्वनि से उनका धन्यवाद करेंगे। और हमारे बीच आदरणीय भोपाल भाई जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रति दो शब्द अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करें।
ओम शांति। आदरणीय भ्राता निर्वेश जी, भ्राता रमेश जी और सभी उपस्थित, आप सभी सभा में उपस्थित भाई और बहने, आज के इस कार्यक्रम को देखकर बड़ी खुशी है। सभी के दिलों में उमंग उत्साह है, किस तरह से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और ये देखा है कि कोई भी कार्यक्रम करते हैं, लक्ष्य तो हमारा बाबा ही होता है कि हम अपने बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। तो ये सारी सभा देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाइयां हैं। और ये कार्यक्रम देश विदेश सारी दुनिया में फैल रहा है, सब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देख करके, हमारी ईश्वरीय सेवाओं को देख करके, सब एक दिन इस झंडे के बाबा के नीचे आएंगे और बाबा का जो कार्यक्रम है इससे फायदा उठाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि ये कार्यक्रम बहुत आगे बढ़े, अच्छे से अच्छा अपना नाम बाला करे। ओम शांति।
आदरणीय गोपाल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका भाग्य है, जैसे बोलते हैं कि भगवान जब भी देता है, तो इस बार हमारा बहुत ही सौभाग्य है, शायद वो 20वीं वार्षिक मीटिंग की वजह से, कि इतने वरिष्ठ भाई बहने हमारे समक्ष है और हम सबको उनका मधुर वाक्य, वरदानी वाक्य सुनने मिला। तो अभी हम निमंत्रण देते हैं आदरणीय अलका बहन जी को। आप कोऑर्डिनेटर है स्पार्क के मुंबई के, और आप पिछले 35 ईयर से बाबा के ज्ञान में अपना समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए कल्याण और उससे जुड़ी सेंटरों का आप संभाल करते हैं, उसके निमित्त है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि हम सबके प्रति, इस मीटिंग के प्रति आपकी जो शुभ आशाएं हैं वो प्रस्तुत करें।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी वार्षिक मीटिंग को सशक्त बनाने वाले वरिष्ठ भ्राता हमारे निर्वीर भाई जी, वरिष्ठ भ्राता रमेश भाई जी और प्यारे भोपाल भाई जी, इन सबकी उपस्थिति साथ में हमारी स्नेही अंबिका दीदी जी का मार्गदर्शन इस मीटिंग को बहुत सुंदर सुचारू रूप दे रहा है। शुरुआत इतनी सुंदर होंगी उसकी, तो उसका अंत और कितना बढ़िया हो सकता है। तो आज हम अपने मन के अंदर उसका भी सुंदर चित्र ला सकते हैं, और आज विशेष इस मीटिंग के अंदर बैठे बैठे विचार आया कि आज हम सभी को जो बाबा ने सेलेक्ट किया है और हम सभी इस मीटिंग के लिए बैठे हैं, तो हमारे ऊपर भी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम विशेष जहां जहां सेवा केंद्रों पर रहते हैं, उन सेवा केंद्रों पर आने वाली विशेष आत्माओं की विशेष पालना करना, और जिसके लिए भी हमें जो आवश्यक है, जो हमारी स्थिति, जिस स्थिति के द्वारा हम उनको परमात्म शक्तियों की और गुणों की अनुभूति करा सकते हैं, उसके लिए हम यहां से तैयार होकर के हर एक अपने सेवा केंद्र को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा लेकर के जाएंगे। और आज समय ऐसा चल रहा है कि संसार की आत्माएं सभी प्राप्तियां होती हुई भी एक आंतरिक थकावट की महसूसता कर रही है, और उस थकी हुई आत्माओं को, जैसे बाबा ने हमें अभी भी कहा कि बच्चे एवर हेल्दी हैप्पी और एवर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का इन्हें वरदान दो, तो उस वरदान को देने के लिए ये स्पार्क का ग्रुप बहुत उचित होगा। और हर एक अपने आप के अंदर ये संकल्प करे कि हमें आज यहाँ पर इतना सशक्त बनने का और अभ्यास करके जाना है, जो अपनी स्थितियों के द्वारा हम अपने सेवा केंद्रों पर इतनी सुंदर सेवाएं देंगे कि इस पार्क में जो हमारी भाई जी की भी आशा है कि बहुत सारे भाई बहन इससे जुटे और बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में मददगार बने, तो ये हमारा वरिष्ठ भाइयों का श्रेष्ठ संकल्प हम साकार करने के लिए आज का ये ग्रुप निमित्त बने। ऐसे में अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आज सभी उपस्थित मीटिंग के लिए आए हुए महानुभावों के प्रति व्यतीत कर रही हूँ, और इस शुभ भावनाओं को साकार करके हम अपने वरिष्ठों को जरूर बताएंगे, ऐसी आज आप सबके लिए है। ओम शांति।
अलका बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय रमेश भाई जी को, जो स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं। हर साल हमें नवीनता में भाई साहब ले जाते हैं। जब भी हम उनके महावाक्य सुनते हैं, तो हमें जो पुराना सोच है, पुरानी तरीका है, उसको बदलने का प्रेरणा मिलता है और नए तरीके से कार्य करने की प्रेरणा उनसे मिलती है। तो हम निवेदन करते हैं आदरणीय भाई जी को कि हमें नवीनता का प्रेरणाएं दे, और उनकी जो भी शुभकामनाएं हैं आप।
ओम शांति। हमारे आदरणीय और साथी हमारे निर्वेर भाई, भोपाल भाई, अलकाबेन, राजकुमार भाई और सभी जो भी बैठे हुए इस मंच पर, अंबिकाबेन तो दादी जी को उसमें साथ में लेकर के आने के लिए गए हैं, आप सबका भी इस 20th जो मीटिंग में चल रही है उसके अंदर आप सब पधारे। मैं भी स्वागत की कड़ी में अपना तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं भी सोच रहा था कि स्पार्क की स्थापना कब हुई। मैंने निर्भय भाई से पूछा कि ज्ञान सरोवर की स्थापना और उसके माँ का कारोबार कब शुरू हुआ। उन्होंने बताया 1990 में, बराबर ना निर्भय भाई?
शुरू हुआ था 92 में मेरे ख्याल में उसका उद्घाटन,
कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। निर्भय भाई ने ही ज्ञान सरोवर की जमीन के बारे में सौदा पहले किया हुआ था और उसके बाद कारोबार शुरू हुआ। 1990 में शुरू हुआ और 92 में उसका विधिवत उद्घाटन हुआ था। तब से इस बार, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था पहले कि जो रूम नंबर 13 है उसके अंदर शुरुआत करने के लिए दादी प्रकाशमणि ने ही हम सबको बताया था कि यहाँ पर बाबा ने कहा है कि रिसर्च का कारोबार होना चाहिए। तो 92 में ही समझो हुआ, परंतु फिर शुरुआत के अंदर तो आप जानते हैं नाम का फाइनल करना, कारोबार कैसे करना चाहिए उस प्रकार से था। हमारे डॉक्टर मित्तल थे, अनुराग भाई आदि जो भी पुराने भाई बहन थे, हमारा अरुण भाई भी जो अभी हेल्थ के कारण अभी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, उन सब के पुरुषार्थ के कारण और सहयोग के कारण यह विश्वविद्यालय का ये स्पार्क विंग जो है, रिसर्च विंग जो है, उसकी शुरुआत हुई और कारोबार शुरू हुआ। आप में से कई शुरू से ही इस कार्य में जुड़े हुए हैं। समय प्रति समय यह कार्यक्रम जो बाबा, जो हमको बच्चों को बाबा ने सिखाया है उसमें हम परिवर्तन करते आए हैं, बाबा की प्रेरणा से, बाबा की डायरेक्शन से। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि शुरू की यज्ञ की स्थापना हुई भारत में हुई, तो भारत के अंदर जो हुई तो भारत के अंदर तो आध्यात्मिकता जो है वो तो सबको बहुत ही उसका ज्ञान मालूम था, सबके लिए कोई नई बात नहीं थी भारत के लोगों के लिए कि लक्ष्मी नारायण कौन है, राधे कृष्ण कौन है, कौरव पांडव कौन है, राम सीता कौन है, रावण कौन है। इस प्रकार से आध्यात्मिकता का बेस जो है हमारे पास था और उसी बेस के आधार पर बाबा ने यह विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया और लक्ष्य भी बताया कि हम सबको नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का कारोबार करना है। परंतु जब हम विदेश में गए, आपको मालूम होगा 1971 में विदेश की सेवा शुरू हुई, तो उस टाइम पर वहां पर जगदीश भाई और मैं खास थे और भी हमारे डॉक्टर निर्मला बहन थी, उषा जी थे और रोजी बहन थी और हमारे ग्रुप लीडर थे शील दादी। तो वहां पर हम सोच रहे थे कि विदेश में सेवा कैसे करें, क्योंकि विदेश में किसी को मालूम ही नहीं था लक्ष्मी नारायण कौन है, राम सीता कौन है, वहां कोई मंदिर भी नहीं था। यहाँ तो हिंदुस्तान में इतने मंदिर है, गोपुरम बने हुए है साउथ में, इस प्रकार से था। तो उस प्रकार से हम सोच रहे थे, फिर हमने हमारे साथ शील दादी भी थी, वो संदेशी बहन भी थी, तो उसके कारण उनके द्वारा भी बाबा से पूछते रहे और बाबा ने इस प्रकार से बताया कि विदेश के अंदर जो भी है थोड़ा टर्न करना पड़ेगा आध्यात्मिकता का बेस के बदले में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड वैल्यूज का जो है प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज जो है वो यूनिवर्सल है। मदर्स लव फॉर एग्जाम्पल, माँ का प्यार जो है, सत्यता क्या है, इन सब वैल्यूज जो है सभी धर्मों में है, सभी स्थानों के अंदर इस प्रकार से उसको मानते ही है। तो इसके कारण वहां पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के रूप में वैल्यू बेस्ड, इसके कारण हमारे ज्ञान के अंदर भी, हमारा कारोबार में भी परिवर्तन हुआ। भारत के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जो आध्यात्मिकता को नहीं मानते थे, परंतु इसको इस बात को मानते थे कि ये ज्ञान जो है बहुत ही अच्छा है। हमको याद है मैं और दादी प्रकाशमणि जब विदेश गए तो कैरो से हमारे साथ में एक भाई बैठा हुआ था, वो अमेरिका की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी जैसे उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसके साथ में मैं बैठा था। मैंने उनको पूछा कि आप भगवान को मानते हैं, तो उसने कहा नहीं। आप आत्मा को मानते हैं, तो कहा नहीं। तो हम क्या करें? मैंने दादी जी को पूछा कि दादी जी ये आध्यात्मिकता को नहीं मानते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा को नहीं मानते तो क्या करें? तो दादी जी ने मुझे सजेशन दिया कि उनको कहो सिविल आई और क्रिमिनल आई। क्रिमिनल आई आज की दुनिया के अंदर सबकी है, उसको सिविल आई कैसे किया जाए? तो उसने वो बात को माना और इतने में इनसे ज्ञान देता गया चर्चा करते गए और हम जिनीवा तक पहुंचे। इतने में तो उनको आत्मा का परमात्मा का सारा ही ज्ञान भी दे दिया। तो इस प्रकार से बेस जो है वैल्यू एजुकेशन का होना चाहिए, वैल्यूज क्या होना चाहिए, इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। और दूसरी बात, विदेश के अंदर हम गए तो उसके कारण यहाँ जो है हमारी जो उन्नति जो होती है, बेस जो होता है जमीन से नीचे से ऊपर जाने का, इस प्रकार से नीचे जैसे पानी जो होता है बीच में वृक्ष में डालते हैं अपने आप ऊपर चला जाता है, इस प्रकार से नीचे से ऊपर जाने का कारोबार होता रहा। विदेश के अंदर हम लोगों ने विचार किया कैसे किया जाए, जगदीश भाई और हमने, तो हमने कहा कि वहां पर थ्योरी ऑफ परकोलेशन, पानी ऊपर से जमीन पर जाता है, इस प्रकार से समुद्र का पानी बादल बन करके नदी में आता है पहाड़ों पर और नदी के रूप में जाता है, अंदर अंडरग्राउंड भी चला जाता है। आप सबको मालूम है हमारे नदी में जो नदी है अंडरग्राउंड पानी जो है इतना आता है कि हमारे जो भी टैंकर्स जो है पानी वहां से लेके आते हैं और हम सब उसी पानी के द्वारा अपना दैनिक कारोबार करते हैं। तो उस प्रकार का थियोरी ऑफ परकोलेशन के हिसाब से थियोरी इस प्रकार की बातों को लेकर के परिवर्तन हुआ। पिछले 2-3 साल से बाबा ने हमारा ये अप्रोच के अंदर भी परिवर्तन करना सिखाया है। आप सबको मालूम होगा बाबा ने 2-3 साल पहले ही कहा था कि बच्चों को अभी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिसके कारण आपको मालूम होगा, एक तो वारिस क्वालिटी बहन भाइयों को उनका निर्माण करने का है और दूसरा माइक क्वालिटी, जिसके जैसे अनुभवी हो जिसके कारण उनके कारोबार के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, उनके शब्दों के आधार पर हमारे ज्ञान की और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। तो ये बाबा ने जो 2 साल से जो कहा हुआ है, हम समझते हैं कि बाबा ने जो ये टर्न कराया है कि अभी 2 प्रकार की बातें होती है। अब एक अव्यक्त बाप दादा ने कहा था एक बार कि 2 प्रकार की सेवाएं होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में बाबा ने मिसाल भी बताया था कि जैसे द्राक्ष जो होती है और कद्दू होता है, ये सब जो क्या होता है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, जिसको बेल कहते हैं जो भी आपकी भाषा में कहते होंगे, उस प्रकार से हॉरिजॉन्टल होता है। और दूसरा भवन का वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, जैसे नारियली का वृक्ष है तो वो वहां ऊपर ही जाता है, सीधा ही ऊपर जाता है। खजूर जो है, डेट्स जो है, वो भी वर्टिकल होता है। तो अभी तक मेरा ख्याल में है कि हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, अब जरूरत है वर्टिकल एक्सपेंशन की। हमारे पास 2 प्रकार के बहन भाई है, एक जूनियर बहन भाई भी है और दूसरे सीनियर बहन भाई भी है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का कारोबार जो है वो हमारे जो जूनियर बहन भाई में जो नए नए जो आते हैं उनके द्वारा भी उसको कोई कुछ सेवा का चांस मिलना चाहिए, उसका सेवा का फील्ड उनके लिए भी रखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। इसलिए उनके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन अच्छा है। परंतु जो हमारे पुराने बहन भाई है जो 10 साल से अधिक वर्षों से ज्ञान में चल रहे, उनके लिए वर्टिकल एक्सपेंशन का जरूरत बहुत है। कारण क्या है कि हमारे पास संख्या बहुत बढ़ रही है और उसमें भी आप जानते हैं टेलीविजन आदि के द्वारा बहुत संख्या बढ़ रही है। 2-3 साल बाबा की मुलाकात के पहले बाबा ने हाथ उठा कर खड़ा करवाया था, तब मैंने निर्भय जी को पूछा था कि कितने नए भाई बहन अभी आ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने खड़ा किया था। तो निर्भय जी ने भी कहा 60-70% नए भाई बहन आ रहे हैं। तो जो नए भाई बहन जो आ रहे हैं उसके कारण क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी में क्वांटिटी एक्सपेंशन तो हो रही है, परंतु जो बाबा ने जो वर्टिकल एक्सपांशन के द्वारा माई क्वालिटी और वारिस क्वालिटी ऐसे जो भाई बहनों का निर्माण करें जिसके कारण जो भी कारोबार होगा तो वो वर्टिकल एक्सपांशन का कारोबार करने के लिए करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि 2015 के अंदर हम ये वर्टिकल एक्सपांशन और इसके अंदर भी जो CSR जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कारोबार वो करने से क्या हो जाएगा, हमारा वर्टिकल एक्सपांशन भी हो जाएगा। कारण क्या है कि संख्या बढ़ रही है परंतु हमारे भवन जो है वो पहले वाले थे, छोटे छोटे भवन है, आप जानते हैं अभी भी यहां पर गुर्जर दादी है। हमारे बीच में हमारी आदरणीय दादी पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले टाइम में उनके जब मिला था तब मैंने दादी जी को निमंत्रण दिया था कि आपको स्पार्क की मीटिंग का उद्घाटन करने के लिए आना चाहिए। बाद में हमारे श्रीकांत भाई ने कागज भी बनाया था निमंत्रण का, उस पर हमने दादी जी के पास वो कागज भेजा था निमंत्रण का, और हमें बहुत हर्ष है कि हमारे आदरणीय दादी जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर करके आज की मीटिंग का उद्घाटन कहो, प्रारंभ कहो, जो भी कहो, उसका उद्घाटन के लिए दादी जी आए हैं। इसलिए हम सब उनका स्वागत भी करते, हमारी बहनें जो है आए और दादी जी का और सभी मंच पर बैठे हुए उनको बैज आदि और द्वारा उनका स्वागत करें। शांति, मैं आपको बता रहा था हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन वर्टिकल एक्सपेंशन ये सब बातें हम बाद में करेंगे। हम अभी हमारे बीच में हमारी दादी जी पधार चुके हैं तो हमारे मंच सचिव जो है उनसे कहता हूं कि आगे का कारोबार का संचालन करें।
धन्यवाद रमेश भाई जी का और हम सभी कर्तक ध्वनि से हमारी आदरणीय दादी जी और मंच पर आसीन सभी आदरणीय वरिष्ठ भाइयों का स्वागत करते हैं। अभी इस 20वीं वार्षिक स्पार्क मीटिंग का ऑफिशियल कैंडल लाइटिंग से हम उद्घाटन करते हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ जो भी सेवाधारी भाई पीछे हैं वो कैंडल लाइटिंग की तैयारी करें। कैंडल लाइटिंग के लिए जिनका नाम हम अनाउंस करेंगे वो सभी मंच के पीछे आएंगे। बिपिन भाई, बिपिन कॉन्ट्रैक्टर भाई, बिपिन नायक भाई, मंदा पिसोलकर और शरद पिसोलकर भाई, विनय भाई, विद्यावल्लभ नगर, जो भी फॉरेनर्स आए हुए हैं वो सभी भाई बहने पीछे आ जाएंगे स्टेज के पीछे। मोहन भाई बारसी से,
और हिमाचल प्रदेश से हमारे दो वरिष्ठ भाई आए हैं, एक कर्नल भाई है और एक डीजी है, उनको भी निमंत्रण है। और एक भाई डॉक्टर शरण मिराजदार है जो एक्स डायरेक्टर है दूरदर्शन मुंबई के, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कैंडल लाइटिंग के लिए। जो भी फॉरेनर्स आए हुए हैं, जो भी ट्रांसलेट कर रहे हैं फॉर द कैंडल लाइट, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ भाई बहने और दादी जी के साथ जो भी मंच पर पधारे कैंडल लाइट के लिए, कैंडल लाइटिंग के लिए, उन सबको मैं आमंत्रित करती हूँ सामने आने के लिए।
शांति। हम सब की परम सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जी, जो बाप समान साक्षात्कार मूर्त है, उनकी सूरत और मूरत में प्यारे बाबा की झलक और उनके नयनों में प्यारे बाबा के सकाश को हम सब अनुभव कर रहे हैं। उनके प्रेजेंस ही जैसे प्यारे बाबा का सन्मुख मिलन का अनुभव कराता है। तो दादी जी, हम सब का आवाहन, प्यार और प्यारे ब्राता जी का निमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच हम सबको वरदानों से झोली भरने लिए, प्यारे बाबा के प्यार और शक्तियों का अनुभव कराने लिए हमारे बीच पधारे हैं। तो प्यारे दादी जी का फिर से हम एक हाथ से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। और प्यारे दादी जी, हमारे हम सबको अपने वरदानी बोल से योग के गहराइयों में हम सबको ले जाएंगे और उनके हर बोल का अनुभव हम प्यारे बाबा को साथ साथ सन्मुख अनुभव करने का अनुभव करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज बिजनेस के हिसाब से जो टॉपिक रखी हुई है वो तो है ही
दादी, स्पार्क,
स्पार्क।
हाँ,
सभी हम लोग तो सबसे बड़ा बिजनेस तो यही करते हैं जो हर सेकंड बाप के याद में रहना और सेवा करना। इसलिए हम सबको सदा ही याद का चांस है, सेवा करना, पहले बाबा की याद फिर सेवा। और याद से उनको शक्ति भी मिलती है। तो आज का दिन बिजनेस के तरफ से ये फंक्शन हो रहा है और बाबा तो हमें
दादी बिजनेस दिन का शाम को है, ये
स्पार्क
योग के ऊपर सुनाना दादी।
अच्छा, ये स्पार्क विंग। तो अभी आप सभी तो योग शब्द सुनते ही आप सबका योग तो लग ही गया हुआ है, योग लगा हुआ है तो सबका। क्योंकि जब हम योग में बैठेंगे तभी तो जो सुनने वाले भी होंगे उनके बुद्धि में भी बैठेगा, वायुमंडल खींचता है। तो वायुमंडल अभी क्या है, हम अपने याद से सारे वायुमंडल में याद का वाइब्रेशन फैले। आज है भी योग की टॉपिक, तो सभी का योग लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, हाथ उठाओ। अच्छा, योग है क्या, हमारे बाबा की याद। और बाबा कितना प्यारा है, बाबा नाम कहने से ही बाबा की जो प्यार है वो सबके दिल में आ ही जाता है। तो आज का दिन
बोलना
अभी तो
दादी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देंगे आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई दादी से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे।
दादी बोल रहे हैं आप,
तो जवाब देंगे ऐसे, ठीक है?
जिसको पूछना है खड़े हो जाएं। यस प्लीज।
यदि पावरफुल योग और उसके गहराई के लिए क्या करें? आप सहज चले जाते हैं बाबा के पास, हम कैसे जाएं?
मैं तो समझती हूँ कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं, जन्मते ही बाबा की प्यार की दृष्टि मेरे बच्चे और हमारे दिल में क्या है, मेरा बाबा, तो बाप और बच्चे का संबंध तो गहरा होता ही है। तो हम भी जब मेरा बाबा कहते हैं ना, मेरा, तो मेरा में ही पावर है, मेरा बाबा है। तो बाबा की याद करने से बाबा की याद दिल में समा जाती है, और बाबा की याद दिल में समाई तो अवस्था कैसी हो जाती है? बाबा का प्यार, भले इतना आप मिले नहीं है बाबा से, लेकिन बाबा कहने से ही बाबा का प्यार जो है वो दिल में उत्पन्न हो ही जाता है। बाप और बच्चे का प्यार का तो अनुभव है ना, तो ये कौन सा बाबा है? ऐसा बाबा तो हमने सोचा ही नहीं था तो मिलेगा हमको, लेकिन देखो यहाँ आने से हमको ऐसी चीज मिली है जो भूल ही नहीं सकती है, भुलाने की कोशिश करे तो भी नहीं भूल सकती, ऐसे है ना? आप बाबा को भूलने चाहो भूल सकते हो, लोग कहेंगे याद करना मुश्किल है, हम क्या कहेंगे, भूलना मुश्किल है। तो बाबा की याद में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं,
परिवर्तन
बाबा की बातें, बाबा ने हमको दिया क्या, बाप का प्यार। वैसे भी बाप और बेटे का याद प्यार होता ही है, लेकिन ये तो बाबा बाबा है, सब बाबाओं का भी बाबा है, अब सबका बाबा है ना, कांध तो हिलाओ। तो बाबा कहने से ही कितना प्यार दिल में आता है। तो बाबा देता क्या है?
दादी पूछते हैं, हम संस्कार परिवर्तन जल्दी करके बाबा जैसा सहज कैसे बने?
बाबा के
जैसे कैसे बने, जो हमारे संस्कार जो बीच में आता है वो कैसे चले जाए?
वो बाबा की याद करेंगे ना तो वो संस्कार, उसके आगे कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाबा है कौन? हमारा प्यार बाबा से है, बाबा के शरीर को नहीं देखते हैं, बाबा आत्मा जो है उसमें क्या क्या भरा हुआ है उसी को ही देखते हैं, और प्यार दिल का होता है, ये कोई स्थूल प्यार नहीं है, ये दिल का प्यार है। मेरा बाबा, ऐसे ही नहीं है बाबा, लेकिन मेरा बाबा है। तो मेरा बाबा कहने से ही प्यार पैदा हो जाता। कोई भी मेरी वस्तु होगी तो अटेंशन जाएगा ना, आपको याद आएंगी ना। छोटा सा रुमाल है, चलते हुए गिर जाता है, वे रुमाल क्या और हम क्या, लेकिन याद आएंगे क्योंकि मेरा है। तो बाबा मेरा है, मेरापन जितना लाएंगे ना उतनी बाबा की याद भूलेंगी नहीं। क्यों देखो, रवाजी रुमाल भी गिरता है, मेरा है, और कितना भी बढ़िया हो लेकिन वो याद नहीं आएगा, मेरा है इसलिए वो याद आता।
तभी आप चार सब्जेक्ट में पांचवी दानर हो गए। तो हम चार सब्जेक्ट में के बाबा ने कहा अभी इमरजेंसी में आपको पास मार्क्स लेना है, तो सहज कैसे ले गए?
सहज बस बाबा की याद, और कुछ भी नहीं करना है। याद तो अनेक प्रकार की होती ही है, लेकिन बाबा है, मेरा बाप है, मेरा बाप है, और क्या है वो परिचय हम सबको मिल गए है। बाबा है कौन?
रिसर्च के द्वारा।
हाँ, रिसर्च के द्वारा। और अनुभव जब हो जाता है मेरा बाबा है कौन, मेरा है, जब कोई भी मेरी चीज मुझे भूलती नहीं है, याद आती है, गिर भी जाएंगी या कुछ भी यूज भी करेंगे तो मेरी है, मेरी नहीं भूलती है। तो मेरा बाबा है, बाबा नहीं है लेकिन मेरा पर्सनल मेरा है बाबा है। तो जितना मेरापन बाबा में लाएंगे ना उतनी बाबा की याद बहुत सहज है। अभी रुमाल है क्या? कागज का रुमाल है तो भी मेरा, जब तक मेरा है कनेक्शन है रुमाल का, तब तक देखो याद आता है। और खत्म हुआ यूज करके पूरा किया तो फिर नहीं आएगा याद। तो मेरा बाबा, जितना मेरापन लाएंगे ना उतना बाबा की प्राप्ति जो होती है ना वो बहुत श्रेष्ठ होती है। बाप से क्या मिलता है? वर्षा। और यहाँ वर्षा ऐसा मिलता है जो सारे कल्प के लिए प्राप्ति हो जाती है, एक जन्म के लिए नहीं लेकिन सदा के लिए हमारे दिल में वो समा जाता। तो आप सभी आज आए हैं, मेरा बाबा तो कहते ही होंगे लेकिन मेरापन लाओ तो याद बहुत सह जाएंगी। जैसे हमने मिसाल दिया ना, रवाजी ये कागज का रुमाल है, तो चलते हुए मेरा कहाँ भी जाएगा, अभी कागज है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा है तो हमको अटेंशन जाएगा, यहाँ मेरा गया था, यहाँ ही मैं ढूंढू, मेरा है।
दादी कागज का रुमाल ना भी इतना याद आए, रेशम का रुमाल हो तो याद आएगा।
है तो मूल बात उसकी।
किसी भाई को पूछना था।
क्या
माइक दे दो उनको, एक भाई पूछ रहा है आपको प्रश्न।
प्रश्न क्या पूछ रहा है?
अभी आप बताएंगे
दादी। अष्ट शक्तियों में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति में क्या अंतर है और उसको जीवन में कैसे लाएं?
वो तो टॉपिक फिर हो गई अलग। हम आपसे जब कहेंगे कहाँ मिले तो फिर सुना दूंगी जवाब।
किसी को और कोई प्रश्न है? इन जनरल दादी जी से कुछ पूछना है?
दादी, आप गए ना सेवा पर, आप योग की शक्ति से आप अकेले निकले, फिर कैसे आपसे बाबा रुद्धि कराया वो अनुभव कुछ?
ये तो टॉपिक आज ही नहीं है ना। बताएंगे ऐसी कोई बात। अभी तो आपका और हमारा कनेक्शन हो गया ना, भाई और बहन का नाता तो हो गया ना।
आज आशीर्वचन
तो भूलेगा थोड़ी
दादी। आज आशीर्वचन देने हैं, आशीर्वाद देनी है सबको।
आशीर्वाद देनी, आशीर्वाद तो यही है, बाबा की याद कभी भी सौपन में भी नहीं भूले। क्यों? क्योंकि बाबा कहते ही कितनी खुशी होती है। अनुभव है ना आप सबको, मेरा बाबा कहते हैं तो पता नहीं ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं ढूंढ रहा है। मेरा ही है बाबा, है तो सबका, ये तो ज्ञान है, लेकिन मेरापन ऐसा लगता है जैसे मेरा भूल गया था, अभी मेरा मिल गया है ढूंढते। तो सभी यहाँ आते रहे हैं तो जरूर बाबा का परिचय तो मिला ही होगा। तो लगता है मेरा बाबा, जिसको लगता है मेरा बाबा, मेरा हो गया, अभी तो वर्षा लेंगी। जब बाबा का तो वर्षा तो मिलेगा ही ना, खुशी का वर्षा तो कितना मिलता है। रोज की मुरली सुनो तो खुशी के खजाने से मुरली भरी हुई। तो सबको खुशी का अनुभव होता है, जिसको होता है वो हाथ उठाओ। चाहिए क्या जीवन में? चाहिए क्या? खुशी चाहिए ना, और क्या चाहिए? सुख शांति खुशी, वो बाबा ने हमको दे दिया। मेरा बाबा हमारे दिल से निकलता है ना, जिसको मेरा बाबा की वासना आती है, मेरा है, वो हाथ उठाना। अच्छा, ये तो सारा क्लास उठा रहा है, पास हो गए।
दादी जी, दूसरी जगह कहीं भी रिसर्च होती है ना, लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में कई रिसर्च करते हैं तो बहुत सीरियस होते हैं, ना मुस्कुराते हैं ना हंसते हैं, और यहाँ पर रिसर्च वाले सब हंसते हैं, मौज मनाते हैं।
क्यों नहीं हंसेंगे? जिसको ढूंढते थे वो मिल गया, इतना सहज जो सोचा भी नहीं था।
तो जिसको दादी, जिसको ढूंढते थे, जिसको ढूंढते थे उसको ढूंढने को कहते सर्च। सर्च पूरी हो गई और अब रिसर्च शुरू हो गई।
निर्भय भाई को अभी से ही देखो, उमंग आ रहा है बोलने। अच्छा लगता है ना ऐसे, क्योंकि हम आपस में इकट्ठे हुए हैं भाई बहन, और नाता तो है सभी से, भाई बहन का नाता तो है ही, तो खुशी होती है। हम किसके बच्चे हो गए? अरे भगवान, जिसको याद करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, उसके बच्चे हो गए। सब बाबा को बाबा कहते हैं ना, आपको लगता है मेरा बाबा मिल गया हमको? हाथ उठाओ थोड़ा। ओ वाह, मेरा बाबा मेरे को मिल गए। अब बाबा को कितनी खुशी होती है जानते हो ना, बाबा को तो हमसे भी ज्यादा खुशी होती है। मेरे बच्चे मेरे को मिल गए, वाह। खुशी की खुराक आ जाती है। अच्छा, अभी औरों को भी तो भाषण करना है ना।
नहीं दादी, आज तो आपका ही टर्न है।
नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी,
मुश्किल से आपका कनेक्शन यहाँ होता है, मुझे होता है।
और हम तो देख रहे हैं कि कई नए नए भी आए होंगे, उनको देख के तो हमारी बहुत खुशी बढ़ रही है। इतने भाई बहने हमको मिल गए, जो पहले बार ही आए हैं वो हाथ उठाओ।
पार्क में जो पहले बार आए हैं मीटिंग में वो हाथ उठाए,
काफी है। बस मेरा बाबा मेरे को मिल गया, यही खुशी है ना।
दादी जी, करीब 615 जितने भाई बहनों ने फॉर्म भर के दिया था, कईयों को ट्रेन का रिजर्वेशन, जैसे अम्बिकापुर ने बताया रात को कि 20 भाई बहन बेंगलोर से आने वाले थे, परंतु उनको ट्रेन का रिजर्वेशन ही नहीं मिला। तो कईयों का आज का मिला हुआ है, तो आज दोपहर में आएंगे, शाम तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 600 जितने बहन भाई हो जाएंगे। और 20 साल से ये मीटिंग चल रही है, इस प्रकार का कारोबार
पक्की हो गई है।
और किसी को कुछ पूछना हो तो बताए। एक बहन का हाथ खड़ा हुआ था।
मैं पूछ रही थी भाई जी, मैं आत्मा में रह के सभी आत्माओं को, घर परिवार या बाहर को, सबको कैसे खुश रख सकती हूँ?
क्या बोला समझ में नहीं आया।
मैं आत्मा में रह के
कैसे सबको खुश रख सकती हूँ, पूछ रहे हैं
सबको। मैं आत्मा में रह के घर में, गृहस्थी में, बाहर परिवार को, सबको खुश कैसे रख सकती हूँ?
घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा को याद करके कैसे जीवन देते हैं?
भाई आप लोग तो बताओ, घर गृहस्थ में सारे कारोबार में चलते, बिजनेस भी करते, सब कुछ करते, लेकिन मेरा बाबा भूल नहीं सकता। आप सुनाओ।
नहीं, हम तो सुनाएंगे आपके द्वारा सुनने का, सबकी इच्छा दादी से सुनने की है ना। देखो सबने हाथ खड़ा किया,
लेकिन मैं कहती हूँ आप यहाँ आए हैं सुनने के लिए, लेकिन सुनने के बाद क्या करना है? बन जाना है, बन जाना है। हाँ, इसमें हाथ उठाओ। ओ, और भी हाथ होता तो उठाते। खुशी का देखो दिन है, ऐसा भगवान से मिलना। कितनी बातें सुनते थे, क्या क्या सुना, लेकिन हमने देखा बाबा सहज मिल गए। जो बातें कहते थे वो सब रहेंगे। बाबा मतलब अपना बाबा मिल गया, बस अपना लगता है ना, हाथ उठाना अपना लगता है ना, जैसे बिछड़े हुए से बाबा से मिल गए। अभी मेरा टाइम तो पूरा हो गया।
मैं अभी आप दृष्टि देकर के सबको योग कर रहा हूँ, सबको उड़ा ही है। जैसे आप उड़ के बाबा के पास जाते हैं, ऐसे ये सभी भी सारी सभा उड़ के बाबा के पास जाए।
ओम चंद्र जी,
जब बाप दादा की प्रवेशता होती है तो उस वक्त आपकी कैसी मतलब स्थिति अवस्था कैसी होती मन की?
जब बाप दादा की पधरावणी होती है तब आपकी अवस्था क्या होती है, आपका क्या अनुभव रहता है?
हम तो बाबा के प्यार में खोए हुए होते, इतना बाबा क्या है, उनकी महिमा के हिसाब से बाबा बच्चों से मिलने के लिए कैसे आता है प्यार से और कैसे मिलते हैं, तो यही याद करके हमको तो आश्चर्य लगता है, भगवान को अपना बना लिया। जैसे आपने बाबा को अपना बनाया है ना, पक्का पक्का। बस बाबा को अपना बना दिया, आपकी गारंटी है स्वर्ग में जाएंगे, ये गारंटी है ही। और जन्म जन्म वहाँ बाबा के छत्र छाया में रहेंगे, सन्मुख तो नहीं होंगे बाबा लेकिन छत्र छाया होंगे।
दादी आप ट्रांस में भी जाते हैं और बाबा मुरली ये भी कहता कि जब जरूरत पड़ती है तो मैं किसी के बच्चे के तंग को मैं आके मदद भी करता हूँ, तो इन तीनों अवस्थाओं में मतलब क्या डिफरेंस है, कोई फील आपके आपके अनुभव से?
जो कहता है कि बाबा कहते हैं बाबा के पास जाते हैं और क्या बोला आपने, फिर ट्रांस में जाते हैं तो बाबा, आप फिर से रिपीट करो दादी जी सुनिए।
एक तो
आप माइक ऐसा रखो,
बाबा की जो प्रवेश होती है तब आपकी अवस्था कुछ और होती है, आप ट्रांस में भी जाते हैं तब कुछ और अवस्था होती है, और तीसरा कि बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो मैं किसी बच्चे के में प्रवेश करके मैं मदद करता हूँ, तो आपको तीनों का ही अनुभव है, तो इसके बारे में थोड़ा मतलब क्लियर कर दीजिए।
तो ये आपका क्वेश्चन है ना, तो हमसे अकेले में पूछ।
दादी वो भाई पूछ रहे हैं कि बाबा की पधरावणी की स्थिति और जब आप ट्रांस में जाते हो उस स्थिति, और जब बाबा कभी कहते हैं कि मैं किसी में प्रवेश करके मदद भी करता हूँ दूसरे को, इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों स्थिति में आपके अनुभव से?
लेकिन आज की टॉपिक दूसरी है।
दादी को जानना चाहिए।
आज तो आप आए हो वो भाषण सुनने के लिए और अभी तो इतना नाता हो गया, जो आप हमसे अलग हो नहीं सकते, हम आपसे अलग हो नहीं सकते।
ओम शांति। सभी सवालों का दादी ने सार में हम सबको जवाब दे दिया कि जितना प्यार बाप से है, जितनी याद बाप की समाई हुई है, उसी में सबका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो परम आदरणीय दादी को बहुत 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 दिल से हम सभी कर्तक धनी से धन्यवाद करेंगे कि वो अपना समय लेके यहाँ पे पधारे, हम सबको वरदानों से लुटाया। अभी दादी हम सबको बाबा की महसूसता कराएंगे अपनी दृष्टि द्वारा, तो सभी भाई बहने एक ही लाइन बनाएंगे, टोली लेंगे यहाँ बहनों से, लेकिन दादी जी से दृष्टि लेते हुए उस तरफ से वो जाएंगे, इस तरफ से चढ़ेंगे और उतरेंगे उस तरफ से, एक ही लाइन बनेगी, सबको मिलेगी, दादी जी इधर ही है, सबको वरदानों से अपनी दृष्टि से सकाश दे रहे हैं, इसलिए कोई भी हलचल या कोई भी रश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन उठेगा, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, द रेस्ट विल बी सीटेड, सो इट विल बी रो वाइज, फर्स्ट ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन फ्रॉम दिस एंड, और सबकी तरफ से हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी, आदरणीय भोपाल भाई जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय लेके यहाँ पे पधारे, हम सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत की, उन सब के लिए धन्यवाद।
आप मिले बिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के
जल्दी जल्दी
मिले मिटी
आह। अदर्स विल बी सीटेड, पीछे वाले कोई आगे नहीं आएंगे, रो बाई रो उठेंगे, एक ही लाइन बनेगी।
सागर अथा वाह बाबा वाह।
बहनों से, अंबिका बहन जी से और अलका बहन जी से टोली और वरदान लेंगे और दादी जी से दृष्टि लेके आगे जाएंगे। Nobody will make a line in the front. It's only one line. बीच में कोई ना जोड़े, पहले ये खत्म होने दीजिए, बाद में जोड़ेंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ज्यादा देर खड़े न रहना। द थर्ड रो, बहनों की तरफ से भी जो भी है, सिर्फ भाइयों की तरफ से भी नहीं, बहनों की तरफ से भी। आप सबसे निवेदन है कि भोजन के बाद 4:30 बजे समय पर यहाँ पे पहुँच जाए। भोजन की व्यवस्था बड़े डाइनिंग शांतिवन में है। और जब भी आप सेशंस में आते हैं, आप सबसे निवेदन है कि अपना मोबाइल साइलेंस में रखें और जो भी ट्रैफिक कंट्रोल है वो सभी बंद कर दें। मधुबन में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल है, आपकी फोन की ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, उसके साथ 10-12 लोगों का बजता रहता है, इसलिए वो बंद कर दीजिए जब तक मधुबन में है। कीजिए, अभी तो सिर्फ 12:30 बजा है, 5-10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, इसलिए आराम से योग युक्त होके साइलेंस में आइए सभी।
खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास
प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा। वाहा बाबा वाहा, वाहा बाबा वाहा, वाहा बाबा वाहा, वाहा बाबा वाह।
दादी जी दृष्टि दे रहे हैं सभी को, सभी साइलेंस में उनके दृष्टि लेंगे। जहाँ पे बैठे वहीं खड़े हो जाइए। दादी की दृष्टि पीछे तक जा रही है, इसलिए कोई भी आगे भीड़ नहीं करना।
अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ है। खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा।